क्षमा करने वाला के चरणों में नमोस्तु के साथ सर्वत प्रार्थना करता हूँ। सावधान पर अपने मंगल में साधना प्रवचन और संस्कृत को प्रसाद करें परम पूज्य द्वारा क्षमा करें।
नमोस्तु पूर्वणे श्री स्वाध्याय विलयम श्री शुद्ध भक्ति कैव सुखम करो। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान्तिम्रान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परम्पराचारिगुरुभ्यो नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमत् समन्तभद्राचारिदेवैर्विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानाम् जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्तभासि यत्थं गणहरदेवैः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्तिकाौ स्वगोकोदशालोचिम् अंगो अंग पहिने पाहुने परियम्मी सुत पणिमाणि गए चूलिया चेय सुतम कायम सहनि चुकाल मुंचेमी पूजे मी वंदा मी नमन सामी दुख को कम खो वैलाओ सुगई गुणम समाय गुणम जिन गुण संपत्ति हो। नमोस्तु पूर्वाणी श्री साध्याय विलयम श्री आचार्य भक्ति काय सुगम करो। विलदीपारुगेभ्या स्वपरमद विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायरिय सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेनया तरन्ति संसारसायरं घोरं शिण्वन्ति अक्षकम्मं जन्म मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणा सुन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाठपाठनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छाई वंते हरिभक्ति का उस गोकोदसालोचिम समनानुसंगस समचरजुतानं पंचविहाचारणमायरियाणम आराधिसुदनानुपदेशानं मुच्छायाणम तीरणगुणपालनरायाणम सवसावनम सैनिचकालमुञ्चे पूजे वन्दामि नमन सामि दुःख को कम को वैलाव सुगैर्गुण समायमनं जिनगुण संपत्ति को। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादोपनायते। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्न करंडक शावकाचार आचार्य समन भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। श्रावक और साधु जैन दर्शन में दोनों के लिए मोक्ष का मार्ग बताया है। और अगर कोई संक्षेप में हमसे पूछना चाहे कि साधु और श्रावक दोनों के लिए जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग कैसा बताया है और क्यों हम किस प्रकार से उस मोक्ष के मार्ग को अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए क्या आप एक शब्द में कह सकते हैं? तो हम एक शब्द में कह सकते हैं, साधु के लिए संगता ही उसका मोक्ष मार्ग है और श्रावक के लिए संतोष ही उसका मोक्ष मार्ग है। वो जो कुछ भी मोक्ष प्राप्ति के लिए शुरुआत करता है, दोनों की शुरुआत में श्रावक शुरुआत करेगा तो संतोष से शुरुआत करेगा और साधु के लिए समता से शुरुआत होगी। साधु की साधुता इसी में है कि वो कितनी समता रखता है और श्रावक का श्रावकपना इसमें है कि वो कितना संतोषी है। क्योंकि जब भी किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, वो जीवन की वास्तविकता, संसार की वास्तविकता और शरीर की वास्तविकता इन सबको समझने लगता है। शरीर की वास्तविकता ये है कि ये निरंतर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शीर्यते शरीर का लक्षण ही है, जो कि जीर्ण शीर्ण हो जाए वो शरीर है। और संसार संसरस्ति इति संसार, जिसमें आवागमन जन्म और मरण लगा हुआ है उसका नाम संसार है। संसार से पार होने के मायने सिर्फ इतना है कि जन्म मरण से पार हो गए। और भोगों की तासीर ये है कि इनको जितना चाहो ये एकदम उतने मिलते नहीं है, जब चाहो तब नहीं मिलते हैं, तो जब तक नहीं मिलते हैं तब तक तकलीफ देते हैं, जब मिल जाते हैं तब तकलीफ होती है और जब छिन जाते हैं तब भी तकलीफ होती है। ये उनकी तासीर है। कहते अपन कि भई अपानी की तासीर का है। इसी तरह से हमें जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब ये तीन बातें बहुत स्पष्ट हो जाती है। फिर संसार शरीर और भोगों से सम्यक दृष्टि विरक्त हो जाता है। जैसे मिथ्या दृष्टि इन सब चीजों में रागान्वित होता है, कहते सम्यक दृष्टि इन चीजों में रागान्वित नहीं होता है। ये उसकी बाह्य कसौटी है। अगर वो संसार शरीर और देह के प्रति आसक्त है तब समझना कि अभी सम्यक दर्शन उसको ठीक ठीक दृष्टि उसकी निर्मल हुई नहीं है। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है वो इन तीनों को समझ करके इनसे अपना व्यवहार बदल लेता है। चीजें तो जो की तरह रहती, शरीर के प्रति भी व्यवहार बदल जाता, संसार के प्रति व्यवहार बदल जाता है और भोगों के प्रति व्यवहार बदल जाता है। रहती सब चीजें जो की हैं, कोई शरीर कहीं फेंकने नहीं जाना है, कोई संसार उठा के कहीं रखने नहीं जाना है, लेकिन संसार में कैसे रहना ये उसकी दृष्टि निर्मल होने की वजह से वो अपने आप आसानी से उस संसार के बीच, ऐसे लिखा हुआ है कि जलते भिन्न कमल है, ऐसे रहता है संसार के बीच में जैसे कि जल के बीच में कमल रहता है, अलिप्त है। वो देह के बीच भी रह करके देह से अलिप्त है, भोगों के बीच रह करके भी भोग से अलिप्त है और संसार के बीच रह करके भी जन्म मरण से अलिप्त है। ऐसा उसका दृष्टिकोण हो जाता है, ऐसी उसकी श्रद्धा में बात आ जाती है। और व्यवहार में भी आना चाहिए, अकेले श्रद्धा में आने से नहीं काम बनेगा, व्यवहार में भी आती है। ज्ञान और वैराग्य ये दो शक्तियां सम्यक दृष्टि भवति नियतम, ज्ञान वैराग्य शक्ति सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि उसके लिए ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान कौन सा? कहते किताबी ज्ञान नहीं, वो तो चाहे जिसको हो जाएगा। टेप रिकॉर्ड तो अपन से ज्यादा ज्ञानी है, वो मैं पूरे समय सार टेप है, तुम्हें कहा याद ही ये 415 गाथाएं और उनको अर्थ समय सार चला दो, सब पूरी गाथाएं सुना दो वो टेप। तो कहते ऐसा किताब वाला ज्ञान नहीं, अपने स्वानुभव से जिसने अपने शरीर और आत्मा के बीच की रेखा को जान लिया है, दोनों के भेद को पहचान लिया है, ऐसा उसका ज्ञान हो जाता है। और वैराग्य कहते जो मिथ्यात्व संबंधी राग था वो उसका छूट जाता, फिर वो वीतरागता के अलावा और किसी को भी ना अपना देव मानता है, ना गुरु मानता है, ना उसके लिए शास्त्र मानता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप कोई पूछे तो इतने ही है कि जो वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहते हैं, सर्वज्ञ हैं वे हमारे भगवान, और जो वीतरागता की उपासना में लगे हैं है? और मूल गुणों का उनके योग 28 मूल गुणों का पालन करते हुए हमारे साधु हैं, और जिसमें वीतरागता की बात लिखी हो, अहिंसा की बात लिखी हो, वो हमारा शास्त्र है, इन पर श्रद्धा उसके होती है। इसके अलावा जो कुछ भी है उससे न राग है न द्वेष है, दोनों चीजें हैं, ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। भोगों के प्रति धीरे धीरे अनाशक्ति तो होनी चाहिए, जितनी आशक्ति पूर्वक मिथ्या दृष्टि भोगों को भोगता है, सम्यक दृष्टि को उतनी आशक्ति तो नहीं होनी चाहिए। अगर उसके भीतर सम्यक दर्शन है तो ये बात जुदी है कि कोई व्यक्ति को भोग की सामग्री नहीं मिले और वो उससे विरक्त हो जावे तो इसकी चर्चा नहीं है। जिसको सारी चीजें मिली हैं इसके बाद भी वो कहता है कि हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जैसी मिली जैसी नहीं मिली, अपने जीवन चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही रखूंगा, इसके अलावा मुझे कोई आवश्यकता नहीं, और जितनी रख रखी है उनमें भी इतनी अधिक आशक्ति नहीं रखूंगा कि उन्हें छोड़ने का समय आए और छोड़ ना सकूं। इतना विवेक रखना चाहिए। चीजों से दो तरह की स्थिति बनती, के तो चीजों को गुलाम बना लो और के चीजों के गुलाम बन के रहो, दो ही चीजें हैं। अगर आप कपड़ा के गुलाम हो तो समर समर के पैर धक्काने लग जाए कपड़ा को, आत्मा को धक्का जितना चाहे लग जाए, आत्मा चाहे जितनी पतित हो जाए, शरीर नहीं गिरना चाहिए, शरीर नहीं खराब होना चाहिए, शरीर बिल्कुल ना हो जाए। हमें लगता कि ऐसा होना चाहिए था उल्टा, कि पहले बूढ़े पैदा होते और फिर बाद में मरत मरत बिल्कुल बचपन जैसे हो जाते, क्यों पूरी इच्छा तो व्यक्ति की गई रहती है कि बूढ़ा न हो पा रहे, बिल्कुल शरीर जो है झुरनी में पड़े और उसमें बिल्कुल जैसा पैदा हुआ था वैसा निर्मल बना रहे, लेकिन कहां है वो, उसका स्वभाव है कि वो जीर्ण शीर्ण होगा और हम उसी के संभाल लेने, उसकी जीर्ण शीर्णता न हो जावे तो उसकी संभाल करते रहते। कहते ये दृष्टि ठीक नहीं है, वो जीर्ण शीर्ण हो गए इससे पहले हम अपने आत्मा को संभाल ले, वो पतित हो इसके पहले हम अपनी आत्मा को उठा लें, ये दृष्टि उसको प्राप्त हो जाती, यही संतोष है। ऐसा मिला ठीक है, जय ठीक है, इसी से काम चला लेंगे। अब और अच्छो भाव चाहिए तो अब और अच्छो कहां से ले आओ, करो होते तो और अच्छो मिलते, बच्चे का शरीर मिल जाता, अब का जीव वाला शरीर मिला इससे तो तपस्या होती नहीं। अरे नहीं भैया, कैसा भी शरीर हो तपस्या तो मन से होती है, शरीर तो सिर्फ माध्यम बनता है। तो अगर आपके दृष्टिकोण ये है कि मुझे तो अपने जीवन में आत्मा का कल्याण करना है, तो फिर अपने आप व्यक्ति चीजों में संतोष, लोग पूछ रहे थे कि संतोष और समता में फर्क क्या है, तो भैया इतने ही है कि चीज मिले चाहे नहीं मिले दोनों स्थितियों में समान है, मिल जावे तो ज्यादा हर्ष नहीं है और न मिले तो दुख नहीं है, ये तो है समता। और नहीं मिली तब तक थोड़ी आकुलता है और कमती मिली कोई बात नहीं, ये है संतोष, इतना ही फर्क है। प्राप्त करने की इच्छा तो है, गृहस्थ के लिए तो रहेगी कि चीज प्राप्त हो जाए, नहीं मिली कोई बात फिर मिलेगी बाद में मिलेगी, संतोष धारण करने ऐसा भोगो भोग की सामग्री में क्या अपन संतोष धारण करते हैं रोज रोज सुबह से शाम तक, एक चीज कमती हो जावे तो ऐसा लगता कि अब समझा तक कैसे कटे, एक जरा सी चीज कम हो जाए पूरा दिन गड़बड़ा जाता है, उस एक जरा सी किसी कमी हो जाए खान पान की चीजों को लेकर के या पहनने ओढ़ने की चीजों को लेकर के, तो कहते ये आशक्ति है। चीजों को हम सहजता से छोड़ सकें तो हम चीजों के मालिक हैं, और चीजें हमसे न छोड़ी जा सके तो समझो कि चीज हमारी मालिक है, हम तो उसके गुलाम हैं। नौकर से मालिक बंधा है, मालिक से नौकर नहीं बंधा, एक बिना नौकर न आवे तो सब पूरा दिन भर गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है कि नौकर की अटकी होती कि आपकी होती, जिसको काम करने की आदत नहीं हो वे नौकर से काम चलता हो, वे एक दिन नौकर नहीं आवे तो सारे काम गड़बड़ा जाएंगे। तो आप किससे बंधे हुए हैं, पराश्रित हैं। एक दिन लाइट में आवे और जिसको पंखा की आदत हो गए, फिर देखो दिन भर निकाल वो मुश्किल है, जीना मुश्किल हो जाए। वो जिसको ही कूलर और उसकी आदत है उसको तो और मुश्किल है। ये सब जो चीजें हैं ये आसक्ति प्रकट करती हैं कि जिनके बिना हमारा काम सहजता से ना चल पावे, वो सब चीजें समझना कि आसक्ति पैदा करने वाली चीज है। और जिनको हम आसानी से छोड़ सकें, जिनके बिना भी हम ठाठ से जी सकें स्वाधीनता पूर्वक, कहते हैं ये व्यक्ति संतोषी है। मिली तो ठीक है, तो आराम आनंद ले लिया, चीज का मिल गई तो एंटरटेन कर लिया, नहीं मिली तो दुखी भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं मिली नहीं मिली। ऐसे जो है जीवन में दृष्टिकोण बदलने से श्रावक के जीवन में संतोष आना चाहिए। इसके बिना मैं धर्म ध्यान नहीं मानता, ये आप मान के चलिएगा। मैं शुरू से अभी भी मैं उसको धार्मिक मानता हूं जो जितना संतोषी, और जिसको हाव हाव बहुत है वो बातें बहुत करते कि जो कर रहे हम और वो कर रहे हैं, और जो धर्म की बात हो बात धर्म की बात, धर्म अपने पास धर्म वर्म नहीं है आपके पास, संतोष नहीं है तो काकाम को तुम आओ, 24 तीर्थंकर के नाम होंगे तुम्हें याद होंगे, धरे रहो। 24 तीर्थंकर ने कहा क्या है वो आपको मालूम है कि नहीं, कि 24 तीर्थंकर के नाम आपको याद है, आपको 5 पापों का स्वरूप मालूम है और 5 अनुव्रतों का स्वरूप मालूम है, लेकिन जीवन में आपके पाप छोड़ने की और अनुव्रत धारण करने की भावना नहीं है, तो क्या मतलब हुआ आपका। जीवन जितना संतोषी हो गए उतना धार्मिक है श्रावक का, और जितना संतावान हो गए उतना बड़ा साधु है। साधु का बड़ापना किसमें है, समता में है, और श्रावक का श्रावकपना किसमें है, कहते संतोष भाव में है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, नहीं मिला इसलिए दिन रात जो है उसी में लगे हुए हैं ये ठीक नहीं है। ऐसा जो है दृष्टिकोण बदलने की कोशिश अपन करें तो अपने जीवन में धर्म की शुरुआत होगी। इसी दृष्टिकोण को बदल करके धर्म की शुरुआत अपन ने कैसे करी, थोड़ा सा विचार करिएगा। सबसे पहले कहते कि 5 अनुव्रत ले लो, कम से कम स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग तो करो, और वही कर सकता है जो संतोषी है। इतना कर लिया, अब उन 5 पापों से तो बच गए, लेकिन अगर सीमा नहीं बनाओगे, दिशाओं की सीमा नहीं बनाओगे, भोगों भोग की सीमा नहीं बनाओगे, जो व्यर्थ होते हैं निष्प्रयोजन पाप उनसे नहीं बचोगे, तो फिर अनुव्रत तुम्हारे ठीक पालन नहीं होंगे। तो फिर उसके साथ 3 गुण व्रत ले लिए कि 10 दिशाओं की सीमा बनाता हूं, भोग 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 की सीमा बना लेता हूं, और जो अनावश्यक पाप है उसको छोड़ देता हूं, प्रयोजन रहे। प्रयोजन भूत पाप तो करना ही है, दिन भर करता है, जिस चीज का प्रयोजन है रोटी भोजन करना है तो उसके लिए जो पाप होगा वो करना पड़ेगा, उद्योग करना उसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन जो अनावश्यक है उसको क्यों किया जाए पाप, तो ऐसे अनावश्यक पाप को छोड़ देता है। इतना करने के बाद कहते कि विचार करो कि तुम्हें बनना क्या था, क्या श्रावक ही बने रहोगे, कहते नहीं नहीं हमारी ललक तो महाव्रती बनने की थी, मगर क्या करें अपनी कमजोरी की वजह से महाव्रती नहीं बन पाए, इसलिए देशव्रती बने हैं। हमने आपसे पहले कहा था कि जिसके मुनि के व्रतों में अनुराग है उसी का देशव्रत सच्चा है बाकी झूठा है, ऐसी परिभाषा लिखी सागर धर्मावृत। जिसको मुनि बनने की ललक है और मुनि के आचरण में जिसका अनुराग है, ऐसा श्रावक का श्रावकपना ही ठीक है। जिसको समता की अपेक्षा है और संतोष धारण किए है लेकिन चाहता है कि समता परिणाम आवे, संतोष तो उसके बीच की चीज है, ऐसा जिसका मन है, इसलिए जब श्रावक की व्रत लेता है तो उसमें 4 व्रत और शामिल कर लेता कि ऐसा कुछ उपाय और बताओ भगवान जिससे कि मुनियों के आचरण की थोड़ी बहुत शिक्षा तो मिले। तो कहते 4 शिक्षा व्रत ले लो जिससे कि समय समय पर मुनियों के आचरण की शिक्षा मिलेगी। जब हम एक जितनी बड़ी सीमा रखी उसमें से और छोटी कर लेंगे तो एक ही स्थान पर रह करके दिन भर गुजारेंगे तो थोड़ा एहसास होगा कि कैसे मुनि महाराज जी एक ही स्थान पर रह करके शांति से अपना जीवन बिताते होंगे। बैठ गए एक जगह तो अब तो उतनी साधना नहीं है। आचार्य महाराज जो है 36-36 घंटे 72-72 घंटे एक ही स्थान पर मलमूत्र के विसर्जन के लिए भी नहीं उठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं दो दो तीन तीन दिन तक जो है एक ही स्थान पर, वहीं सैन वहीं पर ध्यान और अध्ययन एक स्थान पर। तो आसान नहीं है क्योंकि मन जो है चलायमान हो जाता। कहते कि नहीं, शरीर वाणी और मन सब स्थिर, स्थिरता प्राप्त करनी है तो ये दिग्व्रत ले लेना, देश व्रत ले लेना। दिग्व्रत तो ले लिया, देश व्रत और ले लेना। फिर उसके बाद एक निश्चित समय के लिए समस्त पापों का त्याग करके शांति से बैठो, भगवान का नाम लो, इसका नाम सामायिक है। पांचों पापों का त्याग करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, इसी का नाम सामायिक है। और अगर हो सके तो पंच परमेष्ठी के स्वरूप के साथ साथ अपने आत्मा के स्वरूप का भी चिंतन करना, जितनी अपनी क्षमता हो उतना, पर पाप से बचना उतनी देर के लिए। ऐसा नहीं कि आत्मा के चिंतन की तो उधार अपन ने ले ली कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सब बातें विचार करते रहे और उसके साथ साथ विषय कषाय की बातें भी चलती रहीं कि जब पूरी हो जावे फिर उसके बाद तो और बहुत काम होंगे करने पर। जी इतना लिखा है कि आत्मा के बारे में ऐसा ऐसा विचार कर लेना चाहिए, उसे बैठे हैं सोतनो उतनो आत्मा के बारे में जैसा लिखो तो कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, राग द्वेष इत्यादि मेरे विकारी भाव हैं और मेरा आत्मा का स्वभाव उनसे जुड़ा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा, आधा घंटे तक ऐसा विचार किया फिर उसके बाद निकले, वो तो करने ही है जो कछु करने से। ये नहीं है इतना इसका नाम सामायिक नहीं। सामायिक के क्षणों में वो पांचों पापों से विरक्त होता है और सामायिक से उठने के बाद एकदम नहीं जुट जाता पांच पाप में, अनाशक्त होता कि अरे आनंद तो पांच पाप के त्याग करने में आया, अब मुझे इसमें से निकल करके फिर वही पाप करना पड़ेंगे, क्या करूं मैं, छटपटाता है और बेमन से जो है आवश्यक होने पर थोड़ा बहुत करता है अन्यथा नहीं करता। ऐसा जो है उसका दृष्टिकोण हो जाता तो ये सामायिक जीवन में आ गई, उससे मुनियों के समता परिणाम की शिक्षा मिलती है। सामायिक के मायने ही समता भाव रखना, ये भी उसका अर्थ है। ये हो गया, फिर उसके बाद प्रोषद उपवास। अब सामायिक में तो तीन संध्याओं में करना है, कोई एकाध दिन ऐसा भी तो होगा जिसमें कि दिन भर अपन वही काम करें, धर्म ध्यान करें, न कमाना कमाने की चिंता, न काम किसी करने की चिंता, सिर्फ धर्म ध्यान। तो कहते प्रोषद उपवास करो, प्रोषद उपवास नाम का व्रत भी रख दिया कि मुनि महाराज तो रोज एकासन करते, जिस दिन भी उपवास कर ले गए तो क्या होता उनका कि आज एकासन किया कल का उपवास है और परसों फिर एकासन है। कैसा हो गया, जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार भोजन किया जावे वो प्रोषद उपवास कहलाता। प्रोषद का मतलब है एक बार भोजन करना और उपवास का मतलब उपवास। तो जिस उपवास के पहले एक बार भोजन हो गए और बाद में एक बार भोजन हो गए उसको प्रोषद उपवास कहते। उत्कृष्ट रूप से तो ये है और वैसे सामान्य रूप से सभी ग्रंथों में प्रोषद के मायने दिया है पर्व, और पर्व शाश्वत दो ही है, अष्टमी चतुर्दशी। तो कहते हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, ये भी प्रोषद उपवास है। उस उपवास के दिन क्या क्या करना, तो अब इसमें भी जो है दो प्रकार की बातें हैं कि अगर सामान्य गृहस्थ है तो क्या करेगा। व्रती व्यक्ति अलग है, जिसने 12 व्रत लिए हैं वो तो इन सब माने दूसरी प्रतिमा हो गई उसकी, 12 व्रत ले लिए तो दूसरी प्रतिमा वाला अलग ढंग से करेगा और सामान्य व्यक्ति उपवास करेगा तो अलग करेगा। उसको तो अपने घर गृहस्थी के काम भी करना है। अब माँ ने मान लो उपवास किया तो माँ ने उपवास किया तो बच्चों को भोजन तो बनाएगी और खिलाएगी, सहसी बात है। लेकिन जो दो प्रतिमाधारी है वो क्या करेगा, कहते धर्मामृतम सतृष्णा। अब उस दिन भोजन पान नहीं किया है, न दूसरे को कराया है, न भोजन पान की समर्थन किया है, क्या कर रहे हैं, धर्मामृत पी रहे हैं दिन भर, स्वयं भी और दूसरे के लिए भी धर्मामृत पिलाना। कोई आरंभ सारंभ नहीं करना, न शरीर का पर कोई स्नान अंजन इत्यादि जो भी कहते हैं उस दिन, तो जैसे मुनि महाराज जी स्नान नहीं करते हैं और दिन भर जो है अपने आत्मा में लीन रहते, ऐसे ही शिक्षा लेने के लिए आज तो मैं भी जो है कुछ नहीं करूंगा। एक स्थान पर ऐसे ये दूसरी प्रतिमा वाला करे तो ऐसा करता। सामान्य व्यक्ति उपवास करता है तो उसके लिए अलग स्थिति है, क्योंकि उसको सांसारिक कार्य भी करना, वास्तव में उपवास के दिन तो सांसारिक कार्यों से जितना बचा जाए उतना अच्छा उपवास है। उपवास की परिभाषा भी यही करी है कि चारों प्रकार के भोजन के साथ साथ चारों प्रकार की कषाय भी छोड़ना जी उपवास है। और अगर कषाय नहीं छोड़ी और अकेला भोजन छोड़ा तो कहते कमती फायदा मिलेगा, घाटे का सौदा है, करो तो सब मनो लाभ उत्ता नहीं हुआ। ऐसा नहीं सोचना कि कषाय नहीं छोड़ पाए और भोजन छोड़ा उसको कछु नहीं गाओ, ऐसा नहीं कहूंगा। भोजन छोड़ा है इतना तो किया है, धीरे धीरे कषाय भी छूटेगी, छोड़ना है उसी के लिए तो भोजन छोड़ा, कषाय छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से कषाय हो जाती थी, राग द्वेष हो जाता था। सो आज हमने भोजन छोड़ दिया और अपने शरीर के प्रति भी राग कम कर लिया है, धीरे धीरे करके कषाय भी कम करेंगे, ऐसा विचार करके उपवास के दिन धर्मामृत का पान करता। चार प्रकार का भोजन समझते, सब लोग खाते पीते तो हैं, समझते हैं कुछ चीजें हैं जो सॉलिड हैं, जो चबा चबा के खाई जाती हैं, कुछ हैं जो लिक्विड हैं, पेय पदार्थ हैं, कुछ हैं जो चाट के खाई जाती रबड़ी इत्यादि हैं, कुछ हैं जो स्वादिष्ट होती हैं जिनका की स्वाद लेते हैं सौंफ सुपारी वगैरह, यही चार प्रकार का भोजन है। इस चार प्रकार के भोजन में से जिसकी जितनी क्षमता हो वैसा, वैसे तो उपवास के दिन चारों प्रकार का छोड़ा जाता है। सामान्य रूप से अगर रात्रि में लोगों को संयम नहीं धारण हो पाता है ना, या फिर ऐसे लोगों को जिसको थोड़ा भी कहीं कोई वो है डिस्टर्ब, तो उसको थोड़ा पीछे बैठ जाना चाहिए। एकदम फ्रंट में बैठने से वक्ता के ऊपर बहुत मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो उतनी बढ़िया सी बात नहीं निकलती, भीतर से डिस्टर्ब हो जाता बार बार में, तो फिर दूसरी जगह की ख्याल आने लगती, दूसरी जगह की ख्याल आ जाती और नाम अगर निकल जाओ तो आपको लगत करी महाराज खड़ा होते अच्छे नहीं लग रहा होते कि याद ज्यादा आती कि होते अच्छे लोग होते, ऐसे हो जाता। अब देखो बहुत सहज बात है, हम आपसे कहें कि वहां कितने साइलेंस होकर के लोग, मैंने सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, हजार लोग बैठे हुए हैं तो पिंक ऑफ साइलेंस, और इसमें अपना ध्यान इधर उधर बढ़ता तो हमारा भी वो चित्त में फिर उतनी वो जो चीज आपके हिसाब से निकलनी चाहिए। हम कोई ऐसे व्यवस्थित होकर नहीं आउट हुई है, इतनी बैठे हम सो आपको देख के सामने और हमने आपके आपको जो हम चीज समझ में आएगी वैसा कर लेते, कछु विशेष तैयारी नहीं रहती है कि हमें बहुत बहुत बड़ी बात आपसे कहनी। बहुत सहज जो अपन रोजमर्रा के जीवन में करते हैं वो मैं आपसे बात करता हूं कि क्या कर सकते हैं वहां गृहस्थ में रह करके, क्या कर सकते हैं। हमने बहुत गौर से देखी गृहस्थी, दूर से घुस के देखो तो अच्छी नहीं दिखाते और दूर से खड़े होकर देखो तो सब बात समझ में आती है कहां कैसी बात है। बहुत दूर से देखता हूं और आपकी सबकी अंदर की बात जानता हूं कि क्या कितना कर सकते, इतने कैसे हो बाहर निकल के, कैसे हो जो और कैसे होने पड़े सब जानते हैं, कितना कर सकते कौन। लेकिन ये है कि उसमें से कोई उपाय इस तरह का ढूंढ लेवे अपन कि काम अपना चलता रहे और आसान हो जावे, इस जीवन में कितना कर पाए पर आगे के जीवन के लिए संस्कार तो बना रहे ताकि और अच्छा कुछ हम आगे जीवन में प्राप्त कर सके, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं, इतना ही उद्देश्य है। तो थोड़ा सा संयम तो इतना धारण करना चाहिए कि अगर किसी को बाधा है किसी चीज की तो उठ करके पीछे चले गए, भैया दूसरे को क्यों बाधा उत्पन्न हो, अपने लिए तो है, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। ऐसे पूजन में भी आज सुबह भी लोग कह रहे थे कि महाराज पूजन में भी कई बार बड़ी बाधा हो जाती, लोग को विवेक नहीं है उस तरह का, सब धर्म ध्यान तो करते भी लेकिन विवेकहीन नहीं होना चाहिए। श्रद्धा तो बहुत अच्छी चीज है, विवेक शून्य श्रद्धा कोई काम की नहीं, विवेक रखना पहले नंबर। तो कहते कि चार प्रकार का भोजन है उसको छोड़ दिया, उसी का नाम उपवास है, उसके साथ साथ कषाय भी छोड़ना। ये अपन पोषद उपवास पढ़ चुके, इसकी दो और गाथाएं, फिर आज जो है थोड़ी सी चर्चा अपन भैया वृत्ति की करेंगे, दान की चर्चा करेंगे। क्या कहते चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषद सकृत भुक्ति, प्रोषद सकृत भुक्ति सा प्रोषधोपवासो, प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति, शारंभमाचरति। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देने का नाम ही उपवास है। उपोषद के मायने हैं सकृत भुक्ति, सकृत भुक्ति मतलब एक बार भोजन करना, ये अर्थ है इसका। इसी का नाम प्रोषदोपवास है। यदि उपोष्य आरंभम आचरति, कहते हैं उपोष मतलब उपवास करने के बाद आराधना के दिन आरंभम चरती एक बार ही भोजन करे, उपवास के पहले सक्रभुक्ति एक बार भोजन करे और उपवास के दूसरे दिन भी एक बार भोजन करे। इस प्रकार ये पुरुषद उपवास समंत भद्र स्वामी के अनुसार तो पुरुषद उपवास ये ही है, और बाकी आचार्यों ने अष्टमी चतुर्दशी को पर्व के दिन उपवास करने का नाम पुरुषद उपवास कहा। फिर आशाधर जी ने तीन प्रकार के भेद कर दिए कि भैया जिस उपवास के आगे पीछे एक बार भोजन किया जाए सो उत्कृष्ट है, और जिसमें आगे पीछे एक आसन न करो और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो ये मध्यम है, और अगर तीनों दिन एक आसन करो तो जघन्य है, ये भी ठीक है। जिसकी जैसी शक्ति हो उत्तम मध्यम जघन्य तीनों प्रकार का पुरुषद। पर इससे शिक्षा क्या लेनी अपन को, शिक्षा ये लेनी कि समता दिन भर कैसे बनाई जावे। मुनि महाराज जी समता रखते हैं, मुझे भी तीन दिन मिले हैं या कि पर्व का एक दिन मिला है जिसमें मैं समता का अभ्यास करूंगा, तो महीने भर में चार दिन मेरे मुनियों के समान गुजरेंगे। अब इस व्रत में अतिचार लग सकते, दोष लग सकते हैं, कैसे अपन चूक सकते हैं, गलती हो सकती, तो कहते कौन कौन से दोष हैं, बचना चाहिए। ग्रहण विसर्गास्तरणा संस्कृत है, ऐसी आशा नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा गए मन में ही। ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यद्रष्ट है, न्यद्रष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणी यत्प्रोषधूपवास व्यतिलंघन पंचकम् तदिदम्। अतिलंघनम पंचकम्, जी पांच अतिचार हैं, किसके हैं, कैसे प्रोषधोपवास के, प्रोषधोपवासम अतिलंघनम, उसका उल्लंघन हो गया, दोष लग गया, थोड़ा दोष लग जाना अतिचार, और व्रतों का भंग हो जाना अनाचार, ये अतिचार हैं पांच। कैसे, अदृष्ट मृष्टानी, अब जिस दिन उपवास किया है तो दूसरे दिन क्या होता, सहज रूप से आचार्य महाराज सब जानते कि क्या क्या हो सकता है, तो कहते दूसरे दिन थोड़ी अशक्ति हो जाएगी शरीर में और मन में भी थोड़ी सी कमी आएगी, तो सावधानी रखना, बिना देखे सो दे किसी चीज को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि दूसरे दिन यही होगा कि अब जल्दी पड़े, जल्दी नहा धो लो और जल्दी से सब कर लो, फिर मंदिर अंदर हुआ तो भोजन की व्यवस्था बन जाएगी है, तो मंदिर में भी जो है पूजा के बर्तन इत्यादि है उनको भी खींच करके उठा लिया या रख दिया, क्योंकि उस दिन असावधानी बहुत हो सकती, तो कैसे बिना देखे सो दे ग्रहण नहीं करना, कोई भी उपकरण है, पूजा के उपकरण है या घर का कोई कार्य है, और ग्रहण विसर्ग मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन भी जो है, स्नान इत्यादि करना है, वो सब भी बिना देखे सोदे उपवास के दूसरे दिन अशक्ति हो जाएगी तो संभव है, कहते ऐसा नहीं करना, और उपवास है सो आठ ही बजे से, अब तो लगाओ इस तरह से सो जाए सवेरे उठे, तो ठीक है वो सो तो है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं बिछा लेना बिना देखे सो दे, कहते संस्तर इत्यादि भी जो बैठने का सोने का आसन है, हो सकता है ऐसा अशक्ति हो जाने की वजह से, आलस आ जाने की वजह से ऐसा संभव, इसलिए कहते ये संभल के रहना, संस्तर इत्यादि भी बिना देखे सो दे नहीं बिछाना, ना चीजों को उठाना ना उनको रखना, बिना देखे सो दे कुछ नहीं करना, नहीं तो तीन अतिचार तो यही हो गए, और फिर कहते अनादर और अस्मरण, भूल गए कि आज अष्टमी है, अरे ख्याल ही नहीं रहे, ऐसा नहीं, और अब हमें ये अष्टमी और आ गई, अब जो फिर करने पड़े है, तो फिर करने पड़े है, तो फिर इसका मतलब है कि आदर नहीं है आपका उसके प्रति, अनादर भाव है, ऐसा मन में विचार नहीं लाना कि ये तो अब हर अष्टमी चतुर्दशी को करना पड़ता, जो कहां से ले लो हमने प्रोसद, ऐसा नहीं, पूरे जीवन भर के लिए व्रत लिया जाएगा, जब लिया जाएगा प्रोसद उपवास, ये अपने यहां पर प्रतिमाओं का स्वरूप ऐसे ही लिखा हुआ है कि प्रतिमा जो ले लेता तो जीवन भर के लिए लेता है, ऐसा नहीं है कि चार आठ दिन के लिए व्रत ले लिया, उपवास इत्यादि तो एक दिन का किया जाता, पर प्रोषद उपवास जो व्रत है वो तो एक बार लिया तो जीवन भर के लिए हो गया, कहते उसमें इसीलिए तो कहता हूं कि व्रत लेना तो एक मिनट में है, मानो फिर उसका निर्वाह जीवन भर करना पूरे उत्साह के साथ। और आज के समय में क्या है कि व्रत लेने का जिसका उत्साह होता है, व्रतों के पालन में फिर उतना उत्साह नहीं रहता। माला फिर भी को अपन नियम ले ली, एक माला फिरने और बहुत उत्साह से बैठक माला फिर भी, और आधी सी नहीं हो पाई फिर का लगत कि अब जब पूरी हो जाए कैसे तो हो जाए। आधी में तो बहुत मन लगा और आधी में फिर क्या करें। ये ऐसा अपना उपादान अपन को मिला है इस पंचम काल में, एक क्षण अच्छे भाव रहते हैं और अगले क्षण उससे 1% तो कम हो ही जाएंगे। कोई बहुत विरला होगा जिसके जैसे भाव हैं सुबेरे वैसे ही संजा को बने रह गए उतने ही अच्छे, कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी आएगी ही। मान चारित्र है, चारित्र ग्रहण करने के बाद उसमें जो है उतना उत्साह नहीं रह जाता, तो कहते कि उत्साह की कमी हो जाना भी अनादर है, और अनादर होने से तो व्रत में दोष लग ही जाएगा। उत्साह पूर्वक करना, इसलिए उतना ही व्रत लो जितना हम तो एक व्रत जी दे देते लोग, वो जब भी बहुत अपने व्रत गिना उठ के माँ जो व्रत है माँ जो व्रत है, तो हम कहते कि हमसे जो ले लो व्रत कि जी सब व्रत अच्छे से पालन करें जो ही व्रत है और निबड़ाओ एक। अब 4, 8, 10 तो पहले से लिए हुए हैं और एक तो और दे दो आप दे दो एक और, तो हमारी तरफ से जो ही ले लो कि जी 4-8 जो मैं हूं इनको बड़े उत्साह से करो पूरी उमंग के साथ करो, ये मान करके करो कि देखो व्रत कोई भी छोटा नहीं होता, व्रत सब भगवान के कहे हैं सो सब बड़े हैं। अगर रात्रि भोजन का त्याग का व्रत लिया है तो वो भी व्रत है। ये बात जुदी है कि 5 अनुव्रतों को हमारे यहां पर विशेष रूप से व्रत माना है, पर अगर देखें तो कोई भी नियम है कोई भी प्रतिज्ञा है वो छोटी नहीं, छोटी सी प्रतिज्ञा भी अगर हमारे जीवन में हम उत्साहपूर्वक उसका पालन करते तो हमारे कल्याण के लिए वो भी पर्याप्त है, ऐसा मान करके उत्साहपूर्वक। तो ये इसमें हिदायत दे दी गई कि अगर आपने व्रत लिया है परोसद उपवास तो दूसरे दिन आलस आ सकता है, थोड़ी सी अशक्तता आ सकती है, तो विचार कर लो 2 उपास की शक्ति हो तो 1 जरूर करना, और 1 की शक्ति हो तो 1 आसन कर लेना। ऐसा लिखा शक्ति तस्त्याग, अपनी शक्ति को भी नहीं छिपाना लेकिन अपनी शक्ति का उल्लंघन करके भी नहीं करना, नहीं तो अनादर हो जाएगा। क्योंकि शक्ति का उल्लंघन करो वो दूसरे दिन, एक दिन तो बढ़िया से कर लिया दूसरे दिन जो है अब आलस आएगी या अशक्तता लगेगी तो खींचातान में होगा फिर जा करके। कहते जितनी शक्ति है उससे थोड़ा सा कम करके और फिर ग्रहण करना ताकि उत्साह पूर्वक हो जावे। ऊंची जगह पहुंच करके नीचे देखना अच्छा नहीं है, है? नीची जगह खड़े होकर के ऊपर देखना तो फिर भी अच्छा है। थोड़े व्रत ले करके उनका उत्साह से पालन करना ये भी श्रेष्ठ है, ऊंचे व्रत ले करके नीचा आचरण करना जी अच्छा नहीं है, ऐसा लिखा है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्साह की कमी हो सकती, जो अपनी शक्ति से ज्यादा अपन ने ऊंचा व्रत ले लिया तो उत्साह नहीं रहेगा, कर तो रहे हैं निभा रहे हैं मनो उत्साह नहीं है मान लो, तो कहते वो दोष है। ऐसा विचार करके इससे मतलब ये नहीं कि आप व्रतों से डरो, हम डरा नहीं रहे आपके लिए, लेकिन व्रतों को उत्साह से करो आप अपने भीतर उसको उत्साह, अगर कमती हो जाए तो फिर दूसरे व्रती को देख करके अरे जी तो देखो कितने उत्साह के साथ करते हैं, पूजा देख करके अपने मन में उत्साह आता है तो ठीक है, और दूसरे की पूजा देख के अरे जी कैसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, हम तो बहुत शांति से कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो चिल्ला के नहीं कर रहे क्या करें, वो अपने पूजा करने का उनका ढंग वैसा है। नित्योत्सवम मणिमयम, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात बार बार आती है, नित्योत्सवम मणिमयम निलयम जिनाना, मैं तो जिनेंद्र भगवान के उस मंदिर में प्रवेश करता हूं जहां नित्य उत्सव हो रहा है, और आपको हल्ला सवाल समझ में आ रहा हूं कि मैं बड़ा हल्ला है मंदिर में, हल्ला नहीं भैया ये पूजा कर रहा है, हल्ला नहीं कर रहा है, जो सभी कर रहे हैं मान लो तो हल्ला थोड़ी कर रहा है, हल्ला तो होता है बाहर झगड़ा लड़ाई, वो तो पूजा कर रहा है कोई जोर से कर रहा है, तो कर सकता है कोई जोर से पूजा कर सकता है। तो ये इस प्रकार से उत्साहित होना चाहिए और एक दूसरे को व्रत नियम में उत्साह भी दिलाना चाहिए, ऐसा परोसद उपवास है, इसमें दोष लग सकते हैं इसलिए उसको ताकीद कर दिया। अब कहते आगे चौथा जो है शिक्षा व्रत बैया व्रत है, वैसे दान भी कह सकते थे लेकिन दान से अधिक बड़ा बैया व्रत में सब चीजें आ जाती, दान भी आ जाता है पूजा भी आ जाती सब आ जाता, पढ़ते हैं अपन क्या क्या चीज इसमें बैया व्रत नाम के शिक्षा व्रत में आएगी। बैया व्रत वैसे मुनियों का तप है, 12 प्रकार के तपों का आचार्य भगवंत उनके मूल गुण है, आचार्यों के मूल गुण में 12 तप है, तो आचार्य भगवंत के लिए ये तप है उनका मूल गुण है, मुनि महाराज के लिए तप इत्यादि उत्तर गुण है, 12 प्रकार के के तप करते, उसमें से एक बहिया वृत्ति है, अंतरंग तप है। बाहर में किसी के हाथ पैर दबाने की भावना, और वो भी मुनि महाराज के हाथ पैर दबाने की भावना, उनकी सेवा की भावना कब आएगी? जब धर्मानुराग होगा तो आएगी, वो धर्मानुराग नहीं है तो नहीं आएगी भावना। हरे काय को पांव दबाएगा, अभी थका गए का जो पांव दबाएंगे, थके तो नहीं है वो, लेकिन आप थके हो, आपकी थकान दूर हो जाए संसार की, वो खिलाने दबाने और कछु नहीं, भी नहीं थके। कब के थाके हे सखी आज दबावे पांव, ऐसा कहते कि जी ये कब के थके जो आज ये पांव दबवाते हैं, तो कहते भूसो तो भू को मरो कीनो उग्र विहार, ताके थाके अब सखी आज दबावे पांव। ऐसा कुछ है कि बहुत उग्र तपस्या करी है और भूमि पर शयन किया है और वर्षों वर्षों उपवास किया है और ऐसा विहार किया, उग्र विहार किया है, तब के पूर्व जीवन के थके हैं, आज जो है उनके पैर दबाए जा रहे हैं। ऐसा विचार धर्मानुराग पूर्वक भैया वृत्ति, इसलिए अंतरंग तप है। बाहर में तो थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, आलंबन की आवश्यकता के बिना अंतरंग परिणामों से भैया वृत्ति सेवा हो सकती है। सामान्य रूप से सेवा शब्द है, पर रत्नत्रय को धारण करने वाले की सेवा करने का नाम भैया वृत्ति है, इतना ही फर्क है। कहते दानम भैया वृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये, तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो वक्रियमग्रहाय विभवेन। दानम भैया वृत्यम, दान को जो है भैया वृत्ति में लिया है, काय के लिए? कहते धर्माए, धर्म के निमित्त से, किसके लिए? तपोधना है, तप ही जिनका धन है, और गुण में भी इतनी विशेषताएं दे दी धर्म के लिए और तपस्वी जनों के लिए, और जो गुण के निधान है इतनी विशेषताएं जिसकी हैं, तपोधन है, गुण निधि है, और एक और विशेषता है आगे देके देते, अग्रहाय जिनने ग्रह का त्याग कर दिया है। भैया वृत्ति किसकी की जाए? कहते जो गुणों के निधान है, रत्नत्रय रूपी तीन गुण जिनके पास हैं, तप ही जिनका धन है, और जिन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनि जनों के लिए क्या करना? धर्म बुद्धि से, दया बुद्धि से नहीं, ये बहुत आवश्यक है। अरे महाराज भूखे हैं, दे दो अपन भी चौका लगा ले, उन पर दया करके नहीं लगा लेना, उनके प्रति धर्म मेरा सधेगा श्रद्धा पूर्वक। पात्र के लिए दान श्रद्धा पूर्वक दिया जाता, दया पूर्वक नहीं, और स्वार्थ पूर्वक भी नहीं दिया जाता, स्वार्थ जीवन वर्तमान का भी। अरे कूका के है कि इनने चौका ही नहीं लगाओ, महाराज ने कहते रहे और लगाओने, सब देखने अपन को, तो समाज भी देखने, जिसे को कहने पावे कि चौका नहीं लगाओ तो महाराज आए थे, इस भावना से नहीं लगाना, इससे अच्छा है कि नहीं ही हुए। उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करके अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, अपने ऊपर दया कर रहे हैं, उन पर दया नहीं कर रहे। इसलिए इसमें लिखा हुआ अनपेक्षितोपचार, बिना किसी अपेक्षा के, कोई सांसारिक अपेक्षा नहीं है और कोई ख्याति पूजा लाभ की भी अपेक्षा नहीं है, प्रतिदान और प्रतिउपकार की कोई भावना नहीं है कि मैं इनको दूंगा तो मुझे इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा, संसार में मेरी प्रशंसा होगी और मुनि महाराज जी भी मुझे प्रशंसा करेंगे। कहते अगर मुनि महाराज श्रावक से भोजन के पहले प्रशंसा करें तो पूर्व स्तुति नाम का दोष है, और अगर बाद में भी आशीर्वाद स्वरूप कहें कि बहुत अच्छा आपने किया तो पश्चात स्तुति नाम का दोष है। पूर्व स्थिति पश्चात स्थिति बोलने नहीं, चुपचाप जा करके वापस आ जाना, तब जा करके वो व्रतों का पालन होता, श्रावक का भी और साधु का भी। ये भैया वृत्ति है। क्या हो गया पूरा अर्थ? क्या हुआ? जो तपस्वी हैं और सम्यक दर्शन आदि से युक्त हैं और जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनि जनों के लिए विधवेन, ये भूल ही गए थे अपन, विधवेन अर्थात विधि पूर्वक, पात्र कैसा होना चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, और कहते हैं कि हमारे भाव कैसे होना चाहिए, तो कहते प्रतिदान या प्रतिउपकार की भावना से रहत होकर के, किस इंटेंशन से? कहते धर्माय दानम, दान का नाम ही वैयावृत्ति है उनके। और सबसे बड़ी वैयावृत्ति तो ये है कि उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, यही वैयावृत्ति है। उनको जिसमें धर्म ध्यान बढ़े वो करना। सूत्र लिखा हुआ है, दो सूत्रों में सारी बात तत्वार सूत्र में कह दी, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। अनुग्रहार्थम, स्व और पर का दोनों का अनुग्रह होना चाहिए। स्वस्याति सर्गो, अपने द्वारा जो अर्जित किया गया है उसका लोभ छोड़ करके उसको दे देने का नाम दान है। लोभ छोड़ने का है उन क्षणों में। स्वस्याति सर्गो, जो हमारे पास हमने संचित करके जो वस्तु रख रखी है उसके प्रति हमारी आसक्ति कम करने के लिए हमने गुणी जनों के लिए उसको दे दिया, इसका नाम दान है। जिससे हमें पुण्य कार्यन हुआ सो हमारा उपकार हुआ, और सामने वाले को उस चीज के उपयोग से उसका धर्म ध्यान बढ़ा तो उसका भी दान जो है वो दो प्रकार का होता, एक लौकिक दान होता एक पारलौकिक दान। दोनों प्रकार के दान श्रावक को करना पड़ते, तो परलोक वाला तो अलग है, वो श्रद्धा पूर्वक किया जाता, और जो अपने लौकिक दान है उसमें श्रद्धा नहीं, उसमें दया मुख रहती है। तो कैसा है कि लौकिक दान भी तीन प्रकार का है, उसमें से एक होता अन्वय दत्ति, या जिसको कहते हैं सर्वदत्ति भी कहते हैं, या सामान्य रूप से तीन अपन विभाजन कर ले, वैसे नाम अलग अलग दिए, एक समदत्ती है, एक सर्वदत्ती है, एक दयादत्ती है। तीन प्रकार की ये दान की प्रक्रिया लौकिक दान है। किसी पर करुणा आ गई, दया आ गई, दीनहीन है, कोई विचार नहीं किया, ले लो भैया, दे दिया। ये दया पूर्वक उस दीनहीन को दान दे दिया, ये करुणा दान है, या कि दयादत्ती कहलाती है। समदत्ती कौन सी कहलाती, कहते कि अपने समान व्यक्ति को, जिसके आचार विचार अपने समान हैं, उस व्यक्ति को अपनी कन्या देना, ये समदत्ति कहलाता है। अपने समान आचार विचार हैं, व्यसनी को नहीं दे देना कि अब कहूं तो हो जाए, व्यसनी है तो हो जावे। अब अपना भी लड़का व्यसनी हो जाए तो का है, बिटिया भी व्यसनी को दे दे, कहे खुद भी तो लेने पड़े। आज तो ये बहुत बहुत मुश्किल पड़ने लगी आज, और सब चीजें देखो तो दूर ही, व्यसनी में हो जाए जब देखना बहुत कठिन, कौन व्यसनी मिलेगा तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो लिखा ये सब महापुराण में लिखा कि समदत्ति वो कहलाती, अपने समान आचार विचार वाले के लिए। तभी तो कहते कि समधी हो गए जी हमारे, समधी का मतलब का धी मतलब बुद्धि, जैसी इनकी बुद्धि से हमारी समान बुद्धि वाले हैं, समधी हो गए, उनसे हमने संबंध स्थापित करने के लिए। धर्म की परंपरा चले इसलिए, और कोई नहीं, संसार चले इसलिए नहीं, धर्म की परंपरा चलेगी, आगे आने वाली संतान धर्मात्मा होगी, इस दृष्टि से समदत्ति। और कहती सर्वदत्ति कौन सी कहलाती, अपने योग पुत्र को अपनी समस्त आचार परंपरा और जो संसार की परंपरा है वो सब उसको सौंप करके और मुक्त हो जाना, चाबी उसको दे दी। चाबी अकेले नहीं, परंपरा पूरी की पूरी, कि हमारी ऐसी परंपरा चली आ रही, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं इनसे हमारा संबंध है, जी हमारे मंदिर में हमने मूर्ति धरवाई थी, इसकी सेवा शुश्रूषा तुम्हें करना, उन्हीं महाराज आए, हमारी परंपरा है, चौका लगता है तुम्हें लगाना पड़ेगा, जी अपने बेटे से कहना, जी कहलाएगी सर्वदत्ती, अपना सब को जो परंपरा थी उसको सौंप दी कि भैया जी अब तुम्हें करने सब, और हम तो चले, और हमारी तो समाप्त है जीवन, 55 साल की हो गए, रिटायर हो गए, दुनिया करे चाहे न करे, अपन अपने हाथ से रिटायरमेंट लेके उसके जिम्मे सब सौंप देवे, तब तो तारीफ है श्रावक की। ये लौकिक दान है, बताओ अभी परमार्थ का दान शुरू नहीं हुआ, इतना लौकिक दान ही अपन को नहीं बन पाता है। करुणा बुद्धि से किसी को दे दिया, दीन ही नहीं है उसको फौरन, तो अपने मन में तो करुणा बुद्धि भी नहीं आती है, अरे सब अपने अपने कर्म भोगत है, अपने मुका करने चलो आ रही, कहां कहां तक कौन कौन की मदद करेंगे, अरे भाई मदद करो चाहे न करो, पर देने का मन तो बनाओ, सहानुभूति तो दे। सारी आचार्य महाराज कहते कि सारी पैथी एक तरफ, चाहे तुम्हारी एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे नेचुरोपैथ हो, सिंपैथी तो बहुत बड़ी पैथी, इससे बड़ी पैथी हो सकती कोई? सहानुभूति तो दे ही सकते कि आप दुखी हैं, आपका दुख दूर हो, प्राणी मात्र का दुख दूर हो, ऐसी भावना गृहस्थ की होनी चाहिए। ऐसे तीन लौकिक दान पारलौकिक दान अपन जानते हैं, चार प्रकार का होता आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान या उसको उपकरण दान। इसमें आएगा कि वो उपकरण दान, उपकरण में सब आ जाता, ज्ञान के उपकरण भी आ गए, ये संयम के उपकरण। अब इसका मौका तो आने ही वाला है, संयम का उपकरण कोई देगा, कोई पुराना वाला लेगा, जो व्रत नियम संयम लेगा वो संयम का उपकरण देगा। अब इसमें ये नहीं चलेगा कि तुम्हारे इतने पैसा ज्यादा है सो तुम ले लो, पैसे वाला मामला नहीं, ये तो व्रत जिसके होंगे और जिसको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है उसको दे देते हैं कि हाँ ये व्रतों का ठीक ठीक निर्वाह करेगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। इस तरह ये उपकरण दान, ऐसे चार प्रकार के दान पात्र को दिए जाते हैं, इसका नाम है पारमार्थिक दान, अलौकिक दान कहलाता है। अब इन सब की चर्चा जो है आगे आकर के अपन कहें करेंगे। दान जो है वो हमारे लोभ को कम करने के लिए है। एक जगह तो अभी लेटेस्ट जो रिसर्च हुआ है न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह ने किया, उसमें लिखा कि जो व्यक्ति दान देता है या निरंतर देने की भावना भाता है उसको हार्ट अटैक और हार्ट फेलिंग हो सकता है। अब बताओ, ये रिसर्च है, जो व्यक्ति निरंतर देने की भावना रखता है कि अपन को जोड़ना नहीं, देना है, जो चीज इनको दे दो, जो चीज इनको, भैया सब अपने अब ले लो, सब जिसको जो चाहिए सब ले लो, ऐसी भावना दे चाहे नहीं दे, कितना दे पाता है ये बात अलग है, लेकिन देने की भावना निरंतर बनी रहती कि भैया अपन को क्या करना, जिसके काम आए उसको दे दो, कहते ऐसी जो इससे लेशिया उसकी निर्मल रहती है और लेशिया शुभ होने की वजह से उसको हार्ट की डिजीज नहीं होती। ये न्यूरोलॉजिस्ट डीसी जैन का दिल्ली वालों का एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें मैंने पढ़ा कि दान देने से लेशिया शुभ होती है और लेशिया शुभ होने से परिणाम शुभ होने की वजह से उसको हार्ट डिजीज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमको होती है सब संचय वाली, ऐसा नहीं अर्थ लेना, नहीं तो आप सोचो कि महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, उसका आशा ये नहीं, उसका आशा ये है कि अपन दान देने की भावना रखते हैं तो इन चीजों से अपन बच जाते हैं सहज रूप से। और ये तो आज अपन को मालूम पड़ा, हमारे आचार्य भगवंतों ने तो पहले से इन चीजों को कह दिया कि अपने शरीर को भी और मन को भी सबको स्वस्थ रखना हो तो ये दान की प्रक्रिया उसी स्वास्थ्य के लिए है। आत्मा का स्वास्थ्य तो बनता ही है क्योंकि आत्मा से लोभ कषाय कम हो जाती है तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है और बाहर में जो है हमारे शरीर की भी रक्षा होती, क्योंकि जितना अधिक जो है हम जोड़ने जोड़ने की प्रवृत्ति करते हैं उतना अधिक हम और अधिक खोते चले जाते हैं। जो देता है वो बच जाता है और जो बचा लेता है वो समाप्त हो जाता है। कभी पढ़ा आपने तालाब और नदी के बारे में, हमने शायद पहले सुनाया, दोनों के बीच में एक बार बोलचाल बंद हो गई। किस बात पे तालाब और नदी में बोलचाल बंद हो गई? तालाब ने बहुत समझाया नदी को कि तुम ऐसा जो है पानी इतना बहा करके समुद्र में क्यों डाल देती, अरे थोड़ा अपने पास रखा करी, आधे समय में काम आएगा। तो नदी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम तो निरंतर देते हैं, तुम्हारे में नया नया आता चला जाता है। तालाब ने कहा कि हमें जी तुम्हारी बात पसंद नहीं, देखो हमने तो अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है और जितना है अपने पास संचित करके रखते, हम किसी को नहीं देते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब तो बरसात की बात थी, अब ठंड आई, ठंड की बात गर्मी आई, गर्मी आई तो पानी भाप बन के उड़ने लगा, तालाब का भी और नदी का भी, लेकिन नदी का पानी तो बहता था, उतना ज्यादा भाप नहीं बनता था और नया आता रहता था और बहता रहता था। भले ही नदी की धारा पतली हो गई लेकिन नदी सूखी नहीं, पर गर्मी में तो तालाब सूख गया। तब नदी ने कहा कि देखो हम तो निरंतर देते रहे फिर भी नहीं सूखे और तुम तो किसी को बिना दिए ही सूखते चले जाते हो। कहते यही स्थिति है, दोनों हाथ उलीचिए, ये संतन का काम सज्जनता इसमें है कि जो आया उसको दूसरे के उपयोग के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना दूसरे के लिए उपयोग में आता है, उससे अपना चित्त भी प्रसन्न हो रहा और दूसरे का भी हो रहा। और चार बातों का ध्यान रख के देना चाहिए कि विधि कैसी है, विधि पूर्वक देना चाहिए, बिना विधि के नहीं दिया जाता। पात्र दान जो भी होगा विधि पूर्वक, नौदा भक्ति पूर्वक देना है तो नौदा भक्ति पूर्वक। विधि द्रव्य, द्रव्य कैसा है, शुद्ध कमाया हुआ है कि नहीं है, बेईमानी से कमाया हुआ खिलाओगे क्या? तो कहती द्रव्य किन हाथों से, देखो पानी तो छनो है, मनो पैसा छनो आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, ये भी विचार करना चाहिए। पानी तो छान के दोगे, प्रासु करके दोगे, पैसा प्रासु क्या के नहीं, ऐसा धंधा तो नहीं करते जिसमें कि बहुत हिंसा होती, इतना ही कर लो। जो खर कर्म कही 15 प्रकार के हैं कि जंगल
जल जला करके और कोयले का व्यापार कर रहे, उससे पैसा कमा रहे। यजु आजकल चल पड़े पेस्टिसाइड बेच रहे भाई, वो पांच मिनट में वो उदाहरण देते कि जी व्यक्ति दवाई झिड़को से इतने जी पांच मिनट में मर गए, अब बताओ ऐसा कह के बेच रहे और पैसा कमा रहे, उस पैसा से देंगे क्या? विचार स्वयं करना चाहिए, हम किसी को कह नहीं रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्टारक स्वयं विचार करे कि मुझे दान किस चीज का देना है, जो मेरी शुद्ध कमाई है इतनी थोड़ी सी भाव तो चाहिए, शुद्ध कमाई जो हमने से दान देवे अपन, फिर उसका मजा देखो कैसे नहीं होते पंचाश्चर्य, क्योंकि हमारी शुद्धता नहीं। विधि द्रव्य दात्री, दाता के सात गुण दिखे हैं, ये दाता के सात गुण भी होना चाहिए, दाता के सात गुणों में भी कमी आ गई है, मुनि के 28 गुण मूल गुण तो देकर हम अपने सात को देखो कि कौन से दाता के हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र, पात्र भी देखो कि उत्तम है मध्यम जघन है, मैंने उसका अर्थ ये नहीं है कि उत्तम पात्र है सो तो उत्तम भाव से दो और जघन्य पात्र सो जघन्य भाव से दो, कहते ऐसा नहीं, भाव से दो सबको उत्कृष्ट दो लेकिन फल कैसा मिलेगा, उत्तम पात्र कौन देगी उत्तम मिलेगा, मध्यम कौन देगी मध्यम को जघन्य का फल जघन्य, पर भावों की जघन्यता नहीं होनी चाहिए, भावों की तो उत्कृष्टता तीनों पात्रों में है। उत्तम पात्र कौन सा है, कैसी मुनि महाराज है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो युक्त हैं, वे उत्तम पात्र हैं, जिनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है लेकिन देशव्रती हैं तो वे सब मध्यम पात्र हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं जिनके व्रत नहीं है लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है ये जघन्य पात्र हैं, उनके लिए भी जो है दान। इस प्रकार तीन पात्र हैं। दाता के गुणों में हमें विशेष रूप से इतना कहना कि दाता के सात गुणों में श्रद्धा और भक्ति दो चीजें विशेष होती हैं, मौके पर श्रद्धा दिखाओ और पीठ पीछे निंदा करो तो इससे जो है क्या होगा उसका, उसको दाता मानेंगे क्या, उसके हाथ से लिया हुआ भोजन उपकारी है क्या है? तो कहती ऐसी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा और भक्ति तो प्रति क्षण जो है उनके प्रति अनुराग रहता है, उनके गुणों के प्रति अमात्सर्य, एक दाता का गुण है अमात्सर्य, दूसरे दाता से उसको ईर्ष्या नहीं होती कि अरे जय जय देव चले जा रहे रनिंग नहीं के तैयार हो रहे, कहती बहुत अच्छा, जिसके यहां नहीं हो तो वो विचार करता है कि मेरा अभी अंतराय का उदय है, कोई ना कोई बात मेरे भीतर है, जी नहीं विचार करता है कि अरे महाराज जी राग द्वेष करते हैं इनके तह उनके तह, जो उनसे परिचय रहते जो उनकी बहुत जी हजूरी करते उनके तह जा, ऐसा नहीं भैया, ऐसा विचार आने से हमारा कछू नहीं हुए, तुम्हारा जो कछू होने वही हुई, आपका गुण तो समाप्त हो गया, ऐसा विचार सहज रूप से आ जाता क्योंकि संस्कार है इस तरह के। दान जो है आसान चीज नहीं है देना, दाता के साथ गुण कभी विचार करेंगे बैठेंगे विज्ञान होता है उसके लिए, अब महाराज जी आए हैं तो सबई खुआ दो जो उनके लिए हो, वो जिससे साधना बढ़े, जिससे सो जावे हैं सो नहीं खुआ, जिससे जागृति आवे वैसा भोजन, अब आए हैं जो आपको तो सब देने के, रसगुल्ला भी खा लेंगे और हलवा भी, रोज रोज खाएं तो रोज ही मेहमान है शरीर के, तो मेहमानी करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, फिर आप कितने दिन कर सकते मेहमानी, एक आध दिन कर सकते, तो कहते ऐसी विज्ञान उसको मालूम होना चाहिए, उसमें तो लिखा है कि आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान है, क्योंकि आहार दान न होवे तो न अभय दान है न ज्ञान दान है न कछु, क्या करोगे आप, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता है, इसलिए आहार दान की सावधानी कैसी, कहते कि जो जो हाथ पर ग्रास रख रहे हैं वे सब हाथ एक मां के हाथ हैं, और मां कैसी है बहुत सावधान रहती है, और ये कैसे बेटे को आहार दे रही है जो बोलता नहीं जानता भी नहीं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, जैसा दे दोगे वैसा खा लेगा, इतना अज्ञानी है, ऐसे बिना बोलने वाले अनजान बेटे को जैसे वो समय पर अब इसको ये देना है अब इसके बाद ये देना, ऐसा विचार करके देती है, वो विज्ञान कहलाता है। दाता के सात गुणों में एक विज्ञान नाम का भी गुण है और संतोष है, नहीं आए तो संतोष है, ये तो संतोष है ही, और आ गए हैं तो उस समय दो तरह की स्थिति बनती है, जो पात्र होता है जो वाकई योग्य होता है उसके पे न पहुंच पावे तो क्या विचार करता कि देखो हमारी कहीं कोई गलती है, किसी व्यक्ति को कोई चीज न मिले तो क्या विचार करता, हमारी ही कमी है, देने वाले की कमी नहीं है, देने वाले ने तो कोशिश बहुत करी, हमारी योग्यता नहीं है, ऐसा विचार करता, मिल जाने पर कहता कि हमारी योग्यता नहीं थी, देने वाले की कृपा है इसलिए मिल गया है, ऐसा विचार करता, और जो अज्ञानी है कैसा विचार करता, नहीं मिलता सो तो कहता ही है कि देखो ऐसा पक्षपात है धर्म के क्षेत्र में भी, हैं, हमें तो इतने दिन हो गए और करत करत हमारे पे तो आ रही नहीं भाई। और अगर हो जाए तो हुए के बाद मालूम का के है, हाँ जब उनके अंदर दो तीन बार होगा जो हमारे एक बार है भाई, हमें 20 दिन में भाई 25 दिन हो गए, अब हो जाए तो भी नहीं है शांति, जी अज्ञानता है। जिसको मिल जाए तो दिक्कत और नहीं मिले तो है ही ऐसा विवेक पूर्वक जो है श्रावक श्रावक के लिए इतने गुणों का पालन तो दाता के करने ही चाहिए और पात्र के लिए भी अपने योग जो विधि है उसके अनुसार ही ये सब दान की प्रक्रिया है। और ऐसी वैयावृत्ति नाम का तप है और शिक्षा व्रत भी है, हमारे सबके जीवन में ऐसा व्रत आवे और हम शांति पूर्वक अपना जीवन बिताएं इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर।
Thank you.